الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بس ہماری پانچویں مرحلے میں تھی اس میں چھٹی فصل جو وہ چھوڑتے ہیں کہ مطلب اچھے سب مہم ہیں لیکن بہرحال کیونکہ ٹائم کم ہے زیادہ بعض چیزوں کو ہمیں ساتھ چھوڑنا پڑے گا جو مہم تر ہیں جن کے بارے میں زیادہ چانس ہے کہ فائدہ آ سکے ان کو بیان کیا جائے گا یہاں پہ آج ہماری پاس فصل سابع میں ہے کلی اور جزئی میں کلی اور جزئی کی تعریف آپ نے منطق میں پڑھی ہوئی ہے اور یہاں بھی اس کا تذکر نہیں دیتے کلی اور جزئی کسے کہتے ہیں ہے ذہن میں
اس کی دلالت افراد کثیر پر وہ کلی اور
فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہماری بات ہے وہ اس میں ہے کہ آیا کلی خارج میں ہے بھی یا نہیں کیونکہ غربیوں کی طرف سے ایک شبہ آیا ہے کہ جو اصلاً سرے سے کلی کا ہی منکر ہے اس کا یہاں پر جواب دیتے ہیں اور اس فصل کو ختم کر دیتے ہیں اگرچہ یہ بحث جو ہے وہ
ہمارے پاس نہیں آ رہی آج تو ایک چھٹی کی وجہ سے پانچویں مرحلے کی ساتویں فصل ہے
آپ کی فصل
تو یہاں پر تو کچھ اور لکھا ہے
کلی اور جزئی ہے نا کیا چھٹے مرحلے میں چلے گئے نا پانچویں مرحلے کی بات ہو رہی یہ نظریہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اصلا کلی خارج میں موجود نہیں ہے
اصلا کلی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے
کیوں موجود نہیں ہے ہم دیکھتے تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلی کا وجود اس طریقے سے ہے مثلا آپ کے سامنے ایک سکہ رکھ دیا جائے مثال دیتے ہیں وہ اس کو سکہ رکھا جائے جس کو مٹا دیا گیا ہو یعنی اتنا مٹ گیا ہو کہ اصلا پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ سکہ سائز میں اگر ایک جیسے ہوں وہ 100 کا ہے یا 500 کا ہے ہم دیکھا نا یہاں ایران میں 100 تومان اور 500 تومان ایک چھوٹے چھوٹے سکے ایک سائز میں آئے ہوئے ہیں مثلا مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر اس سکے کو اتنا مٹا دیا جائے کہ آپ کے لیے مشخص نہ ہو کہ یہ 100 کا ہے یا 500 کا ہے تو چونکہ یہ سکہ تشخیص نہیں آپ دے پا رہے مبہم ہو گیا ہے آپ کے لیے تشخیص دینا تو اس عنوان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلی ہے خارج میں ہے ایک چیز یہ سکہ جو اس وقت مثلا فرض کرے میرے پاس موجود ہے یہ سکہ ہے یا 100 تومان کا یا 500 تومان کا لیکن چونکہ میرے سامنے یہ سکہ اس وقت مبہم ہو چکا ہے کیونکہ اس کے جو مشخصات تھے وہ مٹ گئے ہیں اب مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ 100 کا ہے یا 500 کا ہے لہذا اس وجہ سے یہ ایک سکہ دو افراد پر کیا کر رہا ہے صدق رکھنے کی قابلیت رکھتا ہے صدق کرنے کی لہذا کلی گویا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سکے کی حالت ہے آپ کہتے ہو جی ہمارے پاس انسان نام کی چیز ہے کہ جو ہزار بندوں کے اوپر صدق کرتی ہے ملیارڈ بندوں کی صدق کرتی ہے بس انسان کلی ہے وہ کہتے ہیں انسان کی حالت یہ ہے جو سکے کی ہے خارج میں آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہو تو خارج میں آپ کے لیے وہ انسان جو ہے وہ مبہم ہے جب وہ مبہم بن جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ وہ کلی ہے لیکن جب اس کے مشخصات آپ کو پتہ چل جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے جزئی بن جاتا ہے لہذا ہمارے خارج میں ہمارے پاس کلی نہیں ہے आप ये कहोगे ये फलां चीज जो है वो कुल्ली और फलां चीज जो है वो जुजई है, बस इस एतबार से ये
सिक्के वाले किसका नजरिया है,
ये गर्बियों का नजरिया मुखालिफ है कुल्ली के बाद। हाँ
सिक्के वाला नजरिया तो अजीब नहीं, अब सिक्के किसी काम का ही नहीं रहा तो उसको दो बार कैसे साबित,
काम की बात नहीं चल रही यहाँ पे, समझाने की बात चल रही है कि अब ये सिक्का अगर लिखा होता है इसके ऊपर तो 100 तुमान पे सिद्ध करता या 500 पे, अगर 100 का होता
लिखा होता है
100 का होता, यानी एक से ज्यादा पर सिद्ध नहीं कर सकता, यानी ये फकत यही 100 का सिक्का है और कोई नहीं हो सकता, 500 का नहीं हो सकता ये। लेकिन अगर इसको मिटा दूं मैं, 5 मिटा दूं, 2 सिफरें लगी रहे तो आप क्या समझेंगे 500 का या 100 का है, मुभम हो गया आपके लिए। खारिज में तो ये है सिक्का, या 100 का था या 500 का था,
इत्मान दे सकते हैं कि शायद 100 का हो या शायद
500 का, यानी खारिज में एक ही है, यानी खारिज में या 100 का था या क्या है 500 का था। अभी आपको मुशख्खस नहीं हो रहा कि ये सिक्का 100 का या 500 का, आप बस कह रहे हैं ये एक सिक्का है, ये 100 पर भी सिद्ध कर सकता है और किस पर 500 भी सिद्ध कर सकता है। हाँ ये इबहाम की वजह से आप सिदक बर कसीरीन कर रहे हैं, अगर ये इबहाम बरतरफ हो जाए तो आप क्या हैं मुशख्खस हो जाएगा आपके लिए, बस कुल्ली नहीं है ये सिक्का, कुल्ली है बस नहीं है। मिसाल उसके बाद इतार आपको दूर से साया नजर आया है, साया देखने के बाद आपने कहा पता नहीं ये इंसान है या हैवान है, या मसलन इससे बालातर आसानदार मिसाल, दूर से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, कोई आ रहा है लेकिन नहीं पता ये जैद आ रहा है या अमर आ रहा है या बगर आ रहा है, अब वो साया तीनों पर इंतबाब की सलाहियत रखता है नहीं रखता, मुमकिन है जैद हो, मुमकिन है अमर हो, मुमकिन है खालिद हो, चुका आपको तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जैसे वो आपके करीब आएगा आपको उसका चेहरा आपके सामने वाजे हो जाएगा तो फकत जो है वो जैद पर जो है वो सिद्ध करेगा। लिहाजा जब वो मुबहम था तो वो शबह जो है वो सलाहियत रखता था कि वो या जैद हो या बकर हो या अमर हो इबहाम की वजह से, और अब चूंकि वो मुशख्खस हो चुका है बस अब एक ही है ज्यादा नहीं है, बस कुल्ली खारिज में हो, कहते नहीं कुल्ली इसी तरीके से है, आप इंसान को अगर कुल्ली बनाते हो कुल्ली की हकीकत ऐसे ही है जैसे शबा की है, कुल्ली की हकीकत ऐसे ही है जैसे सिक्के की है जिसकी मुशख्खसात मिट चुके हों, कुल्ली भी इसी सूरत में है, बस खारिज में कुल्ली नाम की चीज नहीं है। दलील इसकी यही मिसालें हैं जो मैंने अर्ज कर दी है, इसको आप खुद अपने अल्फाज में लिख लें, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखें कि हाँ कुल्ली के रद की दलील, या आप यूं कह लेंगे कुल्लियत के मुनकरीन का नजरिया, जो भी आप अपना उन्वान दे सकते हैं। रद क्या है इसका,
ये रद कौन पेश कर रहा है,
अब फलासफा रद करेंगे ना उसको, किसने करेंगे पहला रद तो इसका ये है कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो तमाम कवानीन कुल्लिया कवानीन कुल्लिया जो उलूम में इस्तेमाल होते हैं वो बातिल है, और अगर कवानीन बातिल हो गए तो उलूम भी पीछे नहीं रहेंगे। मसलन आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं जाके, मसलन आप कहते हैं कि फिजिक्स का कानून है, फिजिक्स का ही होगा अब मैं इश्तबाह ना करूं, कि अगर पानी जो है वो 100 दर्जा हरारत तक पहुंच जाए, उसका टेम्परेचर जो है 100 दर्जा हरारत तक हो जाए तो वो क्या बन जाता है, बुखार। ठीक है, ये एक इल्म ने कानून ने कुल्ली दिया है, कोई भी पानी हो अगर वो उसका टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो वो क्या है, वो क्या बन जाता है, बुखार बन जाता है। कहते हैं कि अगर आप कहें कि कुल्ली नाम की कोई चीज नहीं है, बस ये कायदा कुल्ली नहीं है, कायदा बातिल है इसमें। आप जो कह रहे कि कुल मा इन अगर क्या है वो 100 दर्जा हरारत तक पहुंच जाए तो बुखार बन जाएगा, तो कवानीन जब और उलूम का जो बुनियाद और असास होती है वो क्या है, वो कवानीन कुल्लिया होते हैं उसके। अगर उलूम में कवानीन कुल्लिया मौजूद ना हो तो कभी भी इल्म तश्कील नहीं पा सकता। मसलन आप फलसफे में कहते हैं कि कुल्लो मालूलिन यहताजो इलल इल्ला, हर मालूल इल्लत का मोहताज है। अब ये जो आपने कजिया कुल्लिया बनाया पर इसका मतलब है कि इसको नहीं होना चाहिए, कोई कुल्ली नाम की चीज नहीं, और बस ये कजिया भी नहीं होना चाहिए, पर फलसफे का भी वजूद नहीं होना चाहिए। रियाजी भी ना हो, रियाजी भी सारी कुल्ली की कुल्ली है, दो दो और चार होते हैं।
कायनात कुल्ली है?
कायनात कुल्ली नहीं है। कायनात अपना मफाहिम में अगर चले जाए, मफाहिम में बात करें जाकर तो कुल्ली है, अगर आप ये अशखास में चले जाए तो क्या हो जाएगा, जुजी हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे मिलाद
का। मुतलकन क्या बनेगी?
मुतलकन क्या
मतलब, अगर अफराद में और उसमें रह जाए तो फिर
कुल्ली है ना। आप कोई भी मफहूम जहन में ले, वो कुल्ली बन जाएगा। आपका मफहूम जहन में आ गया मेरे कुल्ली है। अभी पढ़ेंगे कुल्ली और जुजी के मंतिक और फलसफे में, थोड़ा मंतिक में तसामुहन कहा जाता है कि मफहूम या कुल्ली होता है या जुजी होता है, लेकिन यह है कि फलसफे ने दिक्कत के साथ ये बयान किया है कि असलन मफहूम जब भी जहन में आ जाता है वो कुल्ली हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी कैदें लगा दें। जुजी कौन सी चीज है? जुजी वो है जो वजूद खारजी रखती हो। ये एक इनका नक्द है यहां पर।
एक ही दरी
है मसलन आप कहते हैं कि ऐसे मफाहीम हमारे पास ही नहीं, लिखे हमारे पास ऐसे मफाहीम मौजूद हैं जो अशियाए मुतजाद पर हमल होते हैं। अशियाए मुतजाद पर हमल होते हैं, मसलन हमारे पास एक मफहूम रंग मौजूद है, ये क्या है, सफेदी पर भी सिद्ध करता है और स्याही पर भी, दोनों मुतजाद है आपस में। सफेदी कभी सफेदी कभी स्याही नहीं बन सकती और स्याही कभी सफेदी नहीं बन सकती। बस अगर हम आपकी ये बात मान लें कि कुल्ली ऐसे मफहूम को कहते हैं जो मुबहम हो, जो मुबहम हो उसको कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सफेदी को अगर कम रंग कर दो वो स्याही बन जाएगी। ये कैसे हो सकता है? दो चीजें आपस में मुतजाद है, अगर आप उसको कम रंग करते जाएं तो वो कैसे वो स्याही में बदल जाएगी? नहीं हो सकता। बस हमें ऐसे मफाहिम का इनकार करना पड़ेगा कि जो शायद मुतजाद पर हमल होते हो, और हम बिलविजदान दार करते हैं कि ऐसे मफाहिम के बुझलान के हम कायल है नहीं हो सकते, मौजूद हैं। और इसी तरीके से और भी इन्होंने मिसालें दी हैं, इतना काफी है इसके अंदर। बस नजरिए सही क्या है, नजरिए सही ये है कि हर वो चीज जो वजूदे ज़हनी पैदा कर ले, यानी जहन में आ जाए, खुली होगी और जो वजूदे खारजी रखती होगी वो بس کلی اور جزئی کا مصداق یہ ہے اگر ایک چیز وجود ذہنی پیدا کر لے یعنی اس کا مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا کلی ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو خارجی اعتبار سے دیکھیں اس کے وجود خارجی کو دیکھیں تو اس وجہ چونکہ وجود خارجی رکھتا ہے پس وہ کیا ہو جائے گا جزئی ہو جائے گا پس وجود خارجی ملا کا جزئیت کا اور وجود ذہنی ملا کا کس کا کلیت کا اور پھر منطق میں جو ہم پڑھتے ہیں مفہوم یا کلی ہوتا ہے یا جزئی ہوتا ہے وہ اس کو جزئی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں خارج کے اعتبار سے کہتے ہیں بہرحال اس کی اپنی بحث موجود ہے
جو ذہن میں مطلب آ جائے تو یہ کلی ہوگا خارج میں ہوگا تو جزئی
مثلا آپ خارج میں بیٹھے ہوئے اس وقت جزئی ہیں آپ کا مفہوم میرے ذہن کے اندر آئے گا تو یہ کلی بن سکتا ہے اگرچہ منطق میں یہ کہا گیا کہ آپ کا مفہوم جزئی ہے کیونکہ فقط آپ پہ صدق کرتا ہے لیکن وہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک تسامحن اس کو کہتے ہیں وَإِلَّا اگر آپ کا مفہوم میرے ذہن میں آ گیا تو اگر آپ کا آپ کی مثل اگر خارج میں آ جائے تو آپ کا مفہوم اس پہ صدق کرے گا یا نہیں کرے گا کر سکتا ہے
مثلا اگر 10 بندے خارج میں موجود ہوں
سب جزئی ہیں یہ سب بیٹھے ہیں جزئی ہیں
اچھا اگر ان ساروں کا مفہوم وہ ذہن میں آئے یا کسی ایک کا
وہ کلی ہوتا ہے عرض کیا ہے کہ منطق میں جو سکھایا جاتا ہے وہ منطق کی حد تک درست ہے لیکن تھوڑی سی جب بلند تر ہوتے ہیں فلسفے میں آتے ہیں وہ عمیق تر ہوتا ہے تو وہ مطلب تھوڑا غلط محسوس کرتے ہیں پھر اس کو اور ملا کے اصلی یہی ہے جو یہاں فلسفے میں ذکر ہوا ہے کہ کلی جو ہے وہ ذہنی ہے اور خارجی جزئی جو ہے وہ کیا ہے وہ خارج کے ساتھ مرتبط رکھتا ہے مفہوم جب ذہن میں آ جاتا ہے کلی بن جاتا ہے آپ ہزار کہتے ہیں اس کو لگا دیں وہ جزئی نہیں بنے گا ہاں جزئی بنے گا لیکن کس کی نسبت اپنے اوپر والے مفہوم کی نسبت مثلا اگر ایک آپ نے ایک قید لگائی تو ہزار مفہوم ہزار مصداق تھے اس کے ایک قید کا اضافہ کیا تو اس کے 500 مصداق رہ گئے اب اس اعتبار سے ممکن ہے آپ اس کو جزئی کہہ لیں لیکن کیا ہے ابھی تک 500 مصداق اس پہ صدق کر رہے ہیں مثلا قابلیت کیونکہ یہ بھی ہم نے منطق میں پڑھا ہے کہ قابلیت صدق ملاک ہے جزئی اور کلی میں اگر قابلیت صدق ہے تو کلی ہے اگر قابلیت صدق نہ ہو تو جزئی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ واجب تعالی کا مفہوم کلی ہے جزئی ہے کلی ہے کیوں اس وجہ سے کہ مصداق اگرچہ واحد ہے اس کا ابھی تک واجب الوجود نہ ہے اور نہ آئے گا لیکن چونکہ اس کے اندر قابلیت پائی جاتی ہے کہ یہ مصادیق کے متعدد پر صدق کر سکے اس اعتبار سے کلی ہے جزئی کیا ہے مفہوم جب ذہن میں آتا ہے مفہوم کے اندر ہمیشہ قابلیت رہے گی کلیت پر صدق کرنے کی کثیرین پر صدق کرنے کی اور جب اس کے اندر قابلیت موجود ہے ہزار قید بھی لگا دو تو جزئی نہیں بنے گا ہاں جب خارجی وجود میں آ جائے تو یہ خارجی وجود اب وہ دوسرے خارجی وجود پر حامل نہیں ہو سکتا قابلیت ختم ہو جاتی ہے خارجی وجود کے اندر آ کر پس یہ جزئی ہو جائے گا آٹھویں پس یہاں پر جو مطلب یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تمیز و تشخص میں کیا فرق ہے اور پھر ان تمیز اور تشخص کا ملا کیا ہے یہ یہاں پر بیان کریں گے تمیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ تمیز کسے کہتے ہیں مطلب واضح ہے مثلا تمیز آپ نے خود سیرے سے معلوم ہوگا کہ کیا کہتے ہیں تمیز کسے کہتے ہیں یعنی ایک چیز کی دوسری چیز سے جدائی جس چیز میں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں یہ متمایز ہیں آپس میں مثلا انسان جو ہے وہ حیوان سے کیا ہے متمایز ہے یعنی جدا ہے ایک دوسرے سے یہ ملے ہوئے نہیں ہیں یہ تمیز ہے مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمیز یہ ہے مثلا جو لفظ سے واضح ہے یہاں پر ایک تمیز کے بعد اور تشخص کسے کہتے ہیں تشخص جو ہے فرماتے ہیں کہ تشخص امتناع صدق بر کثیرین. یہ جہاں بھی آ جائے وہ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، متشخص ہے، تشخص رکھتی ہے، یعنی جزئی ہے. امتناع صدق بر کثیرین. یہ کیا ہے؟ تشخص کی اصطلاح فلسفی ہے. تشخص کو اصطلاح فلسفی میں کیا کہتے ہیں؟ تشخص بے معنی، یوں لکھنا، تشخص بے معنی امتناع صرف برکثیرین ہے فلسفے کے اصطلاح میں. بس ہر وہ ماہیت جس کے اندر ممتنع ہو صدق کرنا کثیرین کے اوپر، وہ ماہیت متشخص کہلائے گی. ہم کہیں گے کہ یہ ماہیت کیا ہے؟ متشخصہ ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں، تفاوت بین تشخص و تمیز. تعریف وہی جدائی کے معنی میں ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے جدا ہونا، ایک قسم کا مثلا ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے تمیز کیا ہے کہ یہ دو ماہیت آپس میں مغایرت رکھتی ہیں، ایک دوسرے پر صدق نہیں کر سکتی. یہ تقریبا تمیز کا معنی کرتے ہیں. تشخص اور تمیز کے اندر فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو فرق ہے اس کے اندر جو یہاں عرض کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ تمیز امور نسبی میں سے ہے اور تشخص امور نفسی میں سے ہے. امور نفسی اور امور کیا نام ہے اس کا، امور نسبی سے کیا مراد ہے؟ اس کو پہلے بھی کہیں تذکر دیا تھا، دوبارہ دیتا ہوں. یہ مطلب ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ بعض اوقات کافی استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. مثلا آپ کو ایک مثال یہ دی تھی کہ آپ اگر کسی چیز کسی کو مثلا آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میز ایک صفت رکھتا ہے، کون سی صفت رکھتا ہے؟ کہ یہ میز تحت ہے، تحتیت کی صفت رکھتا ہے. تو یہ تحتیت کی صفت کب اس کے اوپر حمل کریں گے اور متصف کریں گے اس کو؟ کہ جب کیا کریں، آپ فوقیت کو مد نظر رکھیں. اگر آپ مقایسہ نہ کریں دو چیزوں کے درمیان، مقایسے کے بغیر کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز فوق ہے اور فلاں چیز تحت ہے. ایسے اوصاف کے جو مقایسے کی وجہ سے متصف ہوتے ہوں موصوف کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں امور نسبیہ میں سے، ان کو آپ خود لکھیں گے. یعنی ایسے اوصاف کہ جن کو مقایسے کی وجہ سے ہم موصوف کے ساتھ متصف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امور نسبی کہلاتے ہیں. جیسے مثال دی ہے،
مقایسے کی وجہ سے
متصف کرتے ہوں
وہ
امور نسبیہ میں سے ہیں، اوصاف نسبیہ یا جو بھی آپ اس کو امور نسبیہ، اضافیہ، اضافی بھی کہتے ہیں اس کو، نسبی بھی کہتے ہیں، اب جو مانا کہہ لے. یا مثلا دوسری مثال دیتا ہوں فوق اور تحت کے علاوہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ مارکر جو ہے وہ کیا ہے، بزرگ ہے اس مارکر سے. اب یہ بزرگی اور کوچگی آپ کب لے کر آئیں گے؟ آیا فقط اس مارکر کو دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے؟ जब भी आप कहेंगे कि ये चीज बुजुर्ग है तो अगला बंदा फौरन सवाल करेगा बुजुर्ग है किससे, इंसान से बुजुर्ग है या अपने जैसी कलम से बुजुर्ग, किससे बुजुर्ग है मुकाबिल बताओ। तो लिहाजा जब तक आप इसके मुकाबिल में कोई चीज लाकर मुकायसा करके नहीं कहेंगे कि ये इससे बुजुर्ग है, वो जुमला तान नहीं होगा। बस ये बुजुर्गी के साथ मुतसिफ हो रही है, कुची के साथ मुतसिफ हो रही है, ये क्या है उमूर निस्बिया में से, यानी जब तक ये दोनों आपस में नहीं सामने आएंगे तो ये बुजुर्ग नहीं कहलाएगी और ये कुचिक नहीं कहलाएगी। बाप बेटे की निस्बत ले ले जो भी, यानी जो औसाफ जिनको मुतसिफ करने के लिए जरूरत महसूस हो किसकी, मुकायसा करने की, वो उमूर निस्बिया में से होंगे, उमूर इजाफिया में से होंगे। उमूर नफसी किसे कहते हैं, यानी फकत आप जात को मद्देनजर रखें और आप एक सिफत को उसके लिए साबित कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि ये मार्कर सफेद है, अब आया ये गोया उस तरीके से है जिस तरीके से पहले वो साफ थे कि ये बुजुर्ग है वो कुची के लिहाजा मुकायसा करे, या ना फकत आप मार्कर को देखते ही कह सकते हैं कि ये मार्कर सफेद है, मुकायसे की जरूरत नहीं है। बस ऐसे औसाफ या ऐसे उमूर के जिनको हम बगैर मुकायसे से हासिल करें, बल्कि क्या है जात ही से हासिल हो जाएं, बगैर मुकायसे से हासिल हो जाएं, उनको कहते हैं ये कौन से उमूर हैं, उमूर नफसिया है, यानी मुकायसे के बगैर हासिल हो जाते हैं। पस तमयुज और तशखुस में क्या फर्क है, फरमाते हैं कि तमयुज जो है वो उमूर इजाफिया में से, यानी क्या मुराद, आप कहते हैं कि हैवान मुतमायज है, किससे मुतमायज है, आगे मुकाबला आपको देना पड़ेगा, आप कहेंगे हैवान मुतमायज है इंसान से, माहियत इंसान मुतमायज है इंसान से, तब जाकर ये जुमला ताम बनेगा, माना पैदा करेगा। तो लिहाजा तमायुज उमूर निस्बिया में से है, लेकिन तशखुस अगर का कहे, मसलन मैं कहता हूं कि ये मार्कर मुतशखिस है, कोई मुकायसे की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आपसे पूछेगा मुतशखिस है किससे मुतशखिस है, मुतशखिस है, मुतशखिस यानी क्या बता दिया, यानी जुजी है। तमायुज दो चीजों के दरमियान होता है, लेकिन तशखुस एक ही चीज रख सकती है, वो मुश्किल नहीं है। इंसान ये जैद जो है जो खारिज में है मुतशखिस है, इंसान खारजी मुतशखिस है, ये कलम मेरे हाथ में मुतशखिस है। बस तशखुस जो है वो उमूर इजाफी निस्बिया में से है और तमयुज उमूर
नफसी में से।
दूसरा फर्क क्या है इनके दरमियान, तमयुज कुलियत के साथ जमा हो सकती है, लेकिन तशख्स जमा नहीं हो सकता, ये दूसरा फर्क। कैसे, मसलन तमयुज कुलियत के साथ काबिले जम है, मसलन आप कहते हैं कि माहियत इंसान मुतमायज है माहियत हैवान से, अब तमयुज आ गया, जुमला भी दुरुस्त है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि माहियत इंसान जुजी है कुल्ली है, बावजूद इसके कि माहियत इंसान मुतमायज है तमयुज रखती है लेकिन कुल्ली है, मुतमायज होते हुए कुल्ली है, इंसान मुतमायज है और कुल्ली भी है, क्योंकि सिर्फ अलर कसीरीन इसके अंदर काबिलियत पाई जाती है, इसके अंदर बात वाजे है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये मार्कर मुतशखिस है, अब ये मार्कर मुतशखिस है इसमें काबिलियत सिद्क कसीरीन पाई जाता है, नहीं पाया जाता, हमने क्या तारीफ किया तशखुस की फलसफे में, इम्तना सिद्क कसीरीन जिसमें पाया जाए वो मुतशखिस होती है, درست. اور کلی کی کیا تعریف ہے؟ جس میں امتنا نہ ہو بلکہ قابلیت صدق کثیرین پایا جاتا ہو وہ کلی ہے. تو تشخص کبھی کلیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تشخص کیا ہے؟ ممتنع ہے صدق کثیرین, اور کلیت کیا ہے؟ قابلیت صدق کثیرین رکھتی ہے. پس تشخص کبھی کلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. جو چیز متشخص ہے وہ ہمیشہ جزئی ہوگی, کلی نہیں بن سکتی. لیکن جو چیز متمیز ہو, تمایز رکھتی ہو, وہ ممکن ہے کلی ہو, ممکن ہے جزئی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ دو فرق ہیں, تمایز اور تشخص میں.
پرنسپل کلی بنے گا یا جزئی بنے گا؟
مفہوم میں چلے جائیں کلی ہے ہر چیز, وجود خارجی لے کر آ جائیں تو وہ جزئی کہلائے گا, کیونکہ ملا کے جزئیات کلی ہے.
تو میوز اور
وجود خارجی ہے. ہاں
تو میوز اور تشخص کے حوالے سے پرنسپل کیا بنے گا؟ تشخص بنے گا, امتناع کثیرین پر دلالت.
یعنی صفت لے گئے ہیں نا پرنسپل کے. مثلا کیا پرنسپل کیا ہے؟ مثلا
ایک مدرسے کا ہے تو
انسان. آپ کہتے ہیں کہ زید پرنسپل ہے, مثلا پرنسپل ایک صفت ہے, آپ اس میں مقایسے کی ضرورت نہیں ہے.
تشخص ہو گیا سر. یہ
تشخص نہیں ہے. یہ تشخص سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو جب کہہ رہے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ متشخص ہے. ابھی آپ جو یہ صفت لے کر آ رہے ہیں, یہاں تمیز و تشخص کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ فلاں صفت رکھتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پرنسپل کی صفت جو ہے وہ کلی ہے یا جزی ہے. ہم کہیں گے کلی ہے کیونکہ اوروں کے اوپر بھی صدق کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے. لیکن جب آپ سے یہ کہا جائے کہ زید متمایز ہے بکر سے, اب یہ زید کیا ہے؟ تمایز بھی رکھتا سکتا. ایک اعتبار سے آپ تمایز بھی کہہ سکتے ہیں, ایک مرتبہ آپ اس کو کہیں تشخص بھی کہہ سکتے ہیں. زید اگر آپ کہیں گے کہ زید متمایز ہے, تو پھر مقابل میں آپ کو بکر کو لانا پڑے گا مثلا کہ کس سے متمایز ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ زید متشخص ہے, تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, فقط یہ آپ کو بتابیان کا یہ متشخص ہے. اگلا بندہ سمجھ جائے گا یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہنا چاہتا ہے کہ زید فقط ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا. اب ہے تمایز کے اقسام. تمایز کی اقسام ہے تمایز. ایک تمایز بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بتمام ذات. تمایز بتمام ذات. تمایز بتمام ذات سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو ماہیات آپس میں متمایز ہیں اور کسی بھی جز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشترک نہیں. ان کو کہتے ہیں تمایز بتمام ذات. تمایز. ہاں یہ غلط لکھا. تمایز. تمایز پہ تمام ذات. تمایز پہ تمام ذات کیا مراد ہے اسے؟ یعنی دو ماہیات کا آپس میں اس طریقے سے متمایز ہونا کہ کسی جز کے اندر مشترک نہ ہو, یعنی تباین کلی پایا جاتا ہو ان کے اندر. اسے کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں کسی بھی جز کے اندر اشتراک موجود نہ ہو. مشترک ہونا, یعنی اس طریقے سے دو ماہیات آپس میں متمایز ہوں کہ کسی ایک جز میں بھی آپس میں مشترک نہ ہو. مثلا اس کی مثال آپ کیا لے سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس ایک ماہیت جسم ہے اور ایک کیا ماہیت لون ہے, یعنی رنگ. یہ آپس میں کیا ہے؟ آپس میں تمایز رکھتے ہیں, لیکن تمایز بے تمام ذات ہے. یعنی جسم کی ماہیت کے اجزاء جو ہے وہ اور ہیں, اس کے اور ہیں. یہ جوہر ہے اور یہ کیا ہے؟ عرض ہے. یعنی عرض کیا تھا, صفات جتنی بھی ہیں وہ عرض کی اقسام میں آتی ہیں. سفیدی, سیاہی, کھڑا ہونا, بیٹھنا, سب جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ اراض میں آتی ہیں. और जिस्म क्या है, ये जौहर है, क्योंकि इसके ऊपर सिद्ध करती है तारीफ। जिस्म अगर खारिज में ताकुक पैदा करना चाहे तो मौजू का मोहताज नहीं है, यानी किसी चीज का मोहताज नहीं है। जिस्म अगर हो तो खारिज में आ सकता है, लेकिन सफेदी, लोन, रंग वगैरह ये क्या मोहताज है, बस वो अरज है, ये जौहर है। और ये अर्ज किया था पहले, जौहर और अरज में क्या पाया जाता है, तबायुन कुल्ली पाया जाता है। बस इनके तहत मुंदरिज होने वाली जितनी माहियात है आपस में क्या होंगी, तमायुज बे तमाम जात रखती होंगी। बात वाजे हुई है। फस एक तमायुज की किस्म है तमायुन, तमायुज बे तमाम जात। और दूसरी किस्म क्या है, तमायुज पाया जाता है लेकिन बेबा अजात, बेबा अजात। मसलन हम कहते हैं कि इंसान तमायुज रखता है किसकी निस्बत, हैवान की निस्बत। अब इंसान और हैवान के दरमियान तमायुज पाया जाता है, यहां तमायुज 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 कुल्ली है, बेतमाम जाते है नहीं है, क्योंकि बेतमाम जाते होता तो हैवानियत कभी जात इंसान में अखज नहीं होती, बल्कि इनके दरमियान जो तमायुज बेबाजात, यानी क्या मुराद, ये दोनों क्या है, मुश्तरक हैं, जिन्स में फसल में जुदा हो जाते हैं, फसल इनका मिला के तमयुज है। बस जहां एक जुज में मुश्तरक हो और एक जुज में जाकर जुदा हो जाते हो, वहां कहते हैं कि यहां माहियात के दरमियान जो तमयुज है बेबाजात है। हैवान की जगह आप फरस की मिसाल लेते हैं, फरस ले, लेकिन हैवान की जो अनुवाक है, फरस ले ले, गधा वगैरह को मिसाल ले ले। अब ये फरस और इंसान आपस में मुश्तरक हैं किसके अंदर, हैवानियत के अंदर, इसमें मुश्तरक हैं ये। इम्तियाज कहाँ है, फसल के अंदर ये मुतमायज हैं। बस इन फरस और इंसान के दरमियान तमायुज, तमायुज कौन सा है, बेबाजात है, क्योंकि एक जुज में मुश्तरक है और एक जुज में आपस में इख्तलाफ है। तीसरा तमायुज की जो तीसरी किस्म जो है तमायुज की, क्या है तमायुज, क्या है, खारिज जात में पाया जाता है, खारिज जात यानी मुतमायज तो हैं लेकिन माहियत सबकी एक है। मसलन क्या उसकी मिसाल ले सकते हैं आप कहते हैं कि हमारे पास दो इंसान हैं, जैद और बकर, ये दो क्या हैं, हकीकत में एक ही हैं, हकीकत एक ही है इनकी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपस में मुतमायज हैं। मुतमायज किसके अंदर है, जात तो इनकी एक है, जात में तो जुदा नहीं है, किसके अंदर है, औसाफ खारिज, औसाफ के अंदर है। मसलन ये जैद क्या है, ये मसलन क्या आप कह लेंगे तवील उलकामा है, और बाकर क्या है, मसलन ये कसीर है, छोटे कामत का है। जैद जो है मसलन आप कहेंगे ये सफेद है, बाकर क्या है, स्याह है। मसलन इस किस्म की जब आप सिफात को मद्देनजर रखेंगे आप कहेंगे कि ये उसके साथ मुतमायज रखता है। अब ये जो इस किस्म की जो तमायुज है इसको कहते हैं ये तमायुज खारिज अज़ात से है, यानी मेरे और आपके दरमियान जो तमायुज पाया जाता है, तमायुज कौन सा है, न तमाम जात का है न बाज़ जात का है, क्योंकि हमारी जात एक है लेकिन क्या, खारिज अज़ात है। आप जो है मसलन किसी और के बेटे हैं, मैं किसी और का हूं, ये भी खारिज अज़ात है। आपका कद और क्या है, मेरा और कद है, मसलन आपका रंग और है, मेरा और है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे जितने भी औसाफ खारिज हैं हमारे, उस एतबार से ये जुदाई हो रही है। बस ऐसे तमायुज को तमायुज खारिज अज़ात कहा जाता है। चौथा तमायुज की चौथी किस्म क्या है तमायुज की, ये हमने तशकी के वजूद के अंदर इसको हमने पढ़ा था, लिहाजा तोजी में नहीं दूंगा, उसी की तरफ आप रजू करेंगे। क्या है तमायुज, तमायुज पाया जाता है कौन सा, जहां मा बहिल इम्तियाज ऐने मा बहिल इश्तराक हो, यानी जिस चीज में इम्तियाज पाया जाता है उसी चीज में इश्तराक पाया जाता है। ये चीजें आपस में मुतमायज तो हैं लेकिन एक ही चीज में, मसलन आपको मिसाल दी थी दो का अदद और चार का अदद, दोनों क्या है, आपस में मुतमायज हैं, दो चार नहीं है और चार दो नहीं है, लेकिन आपस में मुश्तरक हैं अदद होने में और आपस में मुतमायज हैं किस में, अदद होने में। चूंकि अदद चार है पस मुतमायज है अदद दो से, चूंकि अदद है पस दोनों क्या है मुश्तरक हैं, पस माबिल इश्तराक भी इनका एक है और माबिल इम्तियाज भी इनका एक है। ये इम्तियाज की चौथी किस्म है जो कि बाबे तश्की के वजूद में ये वाली हमारा तमायुज की किस्में मुराद होती हैं। अगरचे मंतकी तरीका यही है कि जब तश्कीक दर वजूद को समझाया जाता है तो सबसे पहले तमायुज की सब अकसाम बयान की जाती हैं, फिर जाकर बयान करते हैं कि तश्कीक दर वजूद में ये चौथी किस्म मुराद होती है। चूंकि हमारी बना जो तेजी से आगे जाना थी, लिहाजा ये वाला मुकदमा मैंने वहां जिक्र नहीं किया और यहाँ पर यह बयान हो गया है। ऐसा तमायुज के जहां पर माबिल इम्तियाज ऐन माबिल इश्तराक हो।
ये तो लिख लिया। हां, इसका नाम क्या था? जैसे
ये याद करना हो ना, यूं ही लिख लें, नाम नहीं है इसका। अच्छा। ये इस तरीके से कि ये ऐसा तमायुज के जहां पर माबिल इश्तराक ऐन माबिल इम्तियाज हो। ये फसल हमारी यहाँ पे एक मिला के तशख्स इन्होंने अर्ज की है वो वाज़ह है। मिला के तशख्स क्या है? नजर हक ये है, बस यही लिखे आप, बाकी चीजें आप नहीं लिखते। दुरुस्त नजरिया के मुताबिक मिला के तशख्स वजूद है न के औसाफ। मसलन एक नजरिया यही पाया जाता था कि मैं और आप क्या है, आपस में एक जात रखते हैं। मिसाल भी दी है, हमारा आपस में क्या है, तशख्स पाया जाता है। तशख्स की मिला क्या है? क्योंकि आपके औसाफ और हैं, मेरे औसाफ और हैं। ये एक मशहूर नजरिया पाया जाता था इस तरीके से। लेकिन फिर आकर क्या है, फाराबी ने और फाराबी के बाद मुल्ला सदरा वगैरह ने आकर आज यही नजरिया काबिले कबूल है। वो ये कहते हैं औसाफ की वजह से कोई चीज को तशख्स नहीं होती, बल्कि वजूद है कि जो एक चीज को तशख्स अता करता है। मेरा वजूद मेरे साथ खास है, आपका वजूद आपके साथ खास है। आपके वजूद के आसार और है और मेरे वजूद के आसार और है। यानी हमारे आसार मुख्तलिफ इस वजह से हैं चूंकि हमारा वजूद जो है हमारे साथ खास है। वजूद की वजह से हम मुतशख्स हैं और इस वजूद की वजह से हमारे औसाफ जो है वो जुदा है। ना ये कि औसाफ जो है वो मिला के तशख्स बने हैं। औसाफ के जरिए हम पहचान सकते हैं कि आपस में मुतशख्स हैं। देखें, बाज औकात चीजें मिलाक बनती हैं, बाज औकात चीजें अलामत बनती हैं। मसलन आप घर के ऊपर किसी के अलम लगा हुआ देखेंगे तो ये क्या है, मिला के तशख्स है या अलामत अलामत तशय्यो है या मिला के तशय्यो है? घर के ऊपर अलम लगना किसी के घर का, वो मिला के तशय्यो है या अलामत तशय्यो है? अलामत तशय्यो। क्यों? अगर आप अलम रखा, अलम लगाना पाकिस्तान के अंदर मिला के तशय्यो करार दे दें, पर जिनके घरों के ऊपर अलम नहीं होगा वो क्या होंगे? शिया नहीं होंगे। क्योंकि मिलाक का माना यह है कि यह होना चाहिए हर शिया के अंदर, बस वो मिलाक नहीं है बल्कि क्या है, अलामत है। यानी हम शियों को मुख्तलिफ अलामात व आसार के जरिए पहचानते हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि घर के ऊपर क्या है, अलम लगा होता है। कहते हैं औसाफ की सूरत हाल भी यही है, औसाफ मिलाक तशख्स नहीं है, अलामत तशख्स है। यह हक नजरिया है। बात वाज़े हुई है। बल्कि तशख्स का मिलाक क्या है? वजूद है। ये एक फसल हमारी यहां पर खत्म हो जाती
है। वजूद होगा तो औसाफ आएंगे।
हाँ, इससे पहले नजरिया यही था कि औसाफ जो हैं वो आकर तशख्स देते हैं। फिर मुकाबिल में नजरिया ये आया जो कि काबिल कबूल हुआ, वो ये कि औसाफ अलामत है ना कि मिलाक। छठे मरहले में दाखिल होते हैं। फसल अव्वल ही हम पढ़ चुके हैं। फसल अव्वल फकत तज़क्कुर देना काफी है, इसको आप खुद लिखेंगे। ताकि टाइम हमारा बच जाए इसके अंदर आकर, तारीफ जौहर व अरज है। हमने यहाँ पर क्या बात करनी है, मकूलात के बारे में। छठी फसल मकूलात अशर यानी 10 मकूले, माकूल नहीं मकूल, फर्क है। बाज औकात लड़के जो है वो या माकूलात को मकूला बना देते हैं या मकूले को माकूल बना देते हैं, दोनों में फर्क है। मकूल क्या है, कौल मंतिक और फलसफे में जब भी कहा जाता है हामल मुराद होता है वहां पे। मसलन जब कहा जाता है कि माहियत की तारीफ करें तो क्या कहा था वहां पर, मा युकालो फी जवाब माहू, यानी युकाल से क्या मुराद, यानी मा युहमलो फी जवाब माहू, यानी जो चीज क्या है माहो के जवाब में हामल हो मौजू के ऊपर, उसको क्या कहेंगे, माहियत कहेंगे। और यहां पर क्या कह रहे हैं, मकूलात अशर यानी ऐसे मफाहीम के जो क्या हैं महमूलात वाते होते हैं। और दूसरा जो माना मकूले का जो है, यहां पर भी यही यानी वो वाला माना भी ले सकते हैं क्योंकि ये महमूल वाकई हो सकते हैं, लेकिन जो माना यहां पर मुराद है वो क्या है, मकूला उसको कहते हैं जो जिन्स से आली हो, यानी जिससे ऊपर कोई और जिन्स ना हो। मसलन आप क्या है मंतिक के अंदर, क्योंकि सारी मंतिक की बात है, लिहाजा थोड़ा उस तरह, मसलन आप कहते हैं कि एक जिन्स हमारे पास हैवान है, एक जिन्स क्या है जिस्म है, एक जिस्म क्या, एक क्या है
जिन्स
हैवान जिस्म क्या है उससे ऊपर, जिसमें नामी जिस्म और क्या आप लेकर आते हैं जौहर लेकर आते हैं, आप कहते हैं जौहर के ऊपर कोई जिन्स नहीं है, इसको कहेंगे ये जिन्स आली है, और चूंकि ये जिन्स आली है फलसफे में इसको क्या कहते हैं, ये मकूल है, मकूला है, ये मकूला है, मकूला यानी जिनसे आली को मकूला कहते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, मकूलात अशर यानी क्या मुराद, अजनास आलिया के जो कितनी हैं, 10 हैं। यहां जोहर और अरज की तारीफ करते हैं, जो कि हमने बहुत दफा जो है इसका तज़क्कुर दे दिया है, उसमें तारीफ क्या जोर की थी, फरमाया यहां पे देखें अभी भारत में जिनके पास किताब है इन्होंने यहां लिखी भी हुई है, मैंने लिखवाई भी थी वहां पर। जोहर की वो ये तारीफ करते हैं कि एजा वुजदत फिल खारिज, अगर माहियत ऐसी हो कि जो खारिज में अगर वजूद पैदा करना चाहे, वुजदत लाफी मौजू इन, वो मौजू में मौजूद नहीं हो सकती। अब जौहर की तारीफ करें ना, वहां देखें आप कहां देख रहे हैं, लाफी मौजू इन, वो कभी मौजू की मोहताज नहीं होगी, मौजू में नहीं होगा, मुस्तग़निन अनहा फी वजूदही यानी क्या मुराद, मौजू यानी माहियत क्या नाम है, मौजू जो होगा वो क्या होगा, मुस्तग़नी होगा वजूद में। और अरज की क्या तारीफ की है, फरमाते हैं कि एजा वुजदत, इससे नीचे क्या है अरज की तारीफ है, एजा वुजदत फिल खारिज वुजदत फी मौजूइन, यानी ऐसी माहियत के जो खारिज में अगर तहक्कुक पैदा करना चाहे तो वो क्या है, मोहताज है किसकी, मौजू की, यानी मौजू होगा तो वो खारिज में होगी, जैसा कि अर्ज किया औसाफ सारे क्या है, मोहताज है मौजू के, सफेदी तब आएगी जब जिस्म होगा, लेकिन जिस्म मोहताज नहीं है कि कोई और चीज हो तो ये आएगा, जिस्म अपनी जात में खुद है आ सकता है, सफेदी बगैर जिस्म के नहीं आ सकती, जिस्म की मोहताज है, ये अरज है। ठीक है, ये एक जौहर के अंदर दो मिस्ताक हैं, चाह रहा था कि उसकी तरफ ना जाऊं, मसलन अर्ज कर देता हूं, जौहर के बारे में कहते हैं कि इसके जौहर के दो मिसदाक हैं, एक जौहर क्या है, वो है कि जो मौजू का मोहताज नहीं है, और दूसरा मिसदाक इसका क्या है, यानी माहियत एक महल के अंदर आती है और महल उसका मोहताज होता है, مثلاً کیسے مثال کیا دیتے ہیں اس کی؟ مثال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، کیا ہے؟ مادہ و صورت. صورت جو ہے یہ کیا ہے؟ صورت جسمیہ. یہ کیا ہے؟ یہ جوہر کہلاتی ہے. کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ جوہر کی ایک تعریف جو یہاں پر ہے وہ اس کے اوپر صدق کرتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ صورت جو ہے وہ حال ہے، مادہ محل ہے، اور یہ حال جو ہے یعنی صورت جسمیہ محتاج ہے کس کی؟ مادے کی. جہاں پر حال محل کا محتاج ہو وہ بھی جوہر کہلاتا ہے. جوہر کی ایک انہوں نے یہ تقسیم کیا، لیکن مشہور تعریف، یعنی مشہور سے مراد یہ کہ اگرچہ یہ بھی جوہر ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے، لیکن تعریف وہ معروف ہے، فقط وہی ذہن میں رکھیں تو شاید کوئی سوال نہ دے اس قسم کا. بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ جوہر جو ہے اس کی دو مصداق ہیں، یعنی ایک ایسا جوہر ہے، مثلا ایک جوہر کی تعریف کا مصداق کیا ہے؟ ایسی ماہیت ہے جو اپنے تحقق میں موضوع کی محتاج نہیں ہے، اور ایک ماہیت ایسی ہے کہ جو کیا ہے؟ محل کی محتاج ہے. محل کی محتاج ہے، یعنی حال و محل کا رابطہ ہے، اور وہ حال جو ہے وہ محل کا محتاج ہے. جس طرح کہ صورت جسمیہ محتاج ہے اور حال ہے، کس کے لیے حال ہے؟ مادے کے لیے. مادہ جو ہے وہ محل ہے. یہ جوہر کی جو ہے وہ دو اصطلاحیں ہیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں. اور اس کے مقابل میں عرض ہو جائے گی، بس عرض بھی دو مصداق پیدا کر لے گی. عرض کیا ہے؟ ایک وہ ہے کہ جو اپنے خارج میں تحقق کے لیے موضوع کی محتاج ہے، اور دوسری یہ کہ حال محل جو ہے وہ آپس میں محتاج نہیں ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے تعداد مقولات کی، اس میں اختلاف ہے فلاسفہ کے اندر، اس کی طرف نہیں جاتے. جو جو ان کے فصلوں میں آتا رہے گا اس کو تذکر دیتے رہیں گے. مثلا کہتے ہیں بعض نو مقولات کے قائل ہیں، بعض پانچ کے قائل ہیں، بعض چار کے قائل ہیں، بعض دو کے قائل ہیں. بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہیں وہ دلیلیں موجود ہیں. بہرحال جہاں بھی اس کے کوئی مطلب آتا رہا وہ بیان ہوتی رہے گی. اب آئیں فصل دبوم کے اندر. فصل دبوم میں بیان کرتے ہیں جوہر کی اقسام. جوہر کی اقسام کتنی ہیں؟ جوہر کی پانچ اقسام ہیں. یا جوہر جو ہے وہ جسم ہے، صورت ہے، نفس ہے، عقل، اور پانچویں کیا ہے؟ مادہ. یہ پانچ قسمیں ہیں جوہر کی. تعریفیں کیا ہیں؟ آسان ہیں. عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسا جوہر یا ایسی ماہیت جوہر، ٹھیک ہے، ایسا جوہر جو ذاتن و فعلن مجرد ہو. یہ عقل ہے. تیز تیز سے لکھیں، ٹائم بہت کم ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تقریباً آدھا مرحلہ ختم کرے تاکہ کل ہمارا یہ چھٹا مرحلہ ختم ہو جائے. نفس کسے کہیں گے؟ ایسا جوہر جو ذاتن مجرد ہے لیکن فعلن مادی ہے. صورت کسے کہتے ہیں؟ مادہ کی جہت فعلیت کو صورت کہتے ہیں. یعنی جب ایک چیز فعلی ہو جاتی ہے اس فعلیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی صورت ہے. فعلیت اور مادہ سمجھایا تھا آپ کو، ذہن میں ہونا چاہیے. जिस्म किसे कहते हैं जो क्या है जातन ना, ये ना लिखें इसको बल्कि लिखें कि ऐसा जोहर जो तूलो आरजो उमर में या तूलो आरजो उमर रखता हो, यानी इसको तूलो आरज उमुक को क्या कहते हैं फलसफे में इंतदाद सलास। ये इस्तेलाह आपने हतमन याद रखनी है, कहीं भी ये आ सकती है, कोई पूछ सकता है आपसे तूलो आरज उमुक इसको क्या कहते हैं फलसफे में इंतदाद सलास, यानी तीन इम्तदाद रखता है। ये हो गया जिस्म की तारीफ। मादा क्या है जिहत काबिलियत को, ऐसा जोहर जो जेहत काबिलियत रखता हो, जेहत काबिलियत को क्या कहते हैं मादा। ये सारी तफासीर जो है वो अर्ज हो गई थी। अब इधर आ जाए अकल जातन व फेलन मुजरद से क्या मुराद है, यानी क्या अपने काम अंजाम, ना तो जात में मादी है वो, मसलन जिस्म जो है वो क्या है अपनी जात में मादी है, मुरक्कब है, यानी मादी से क्या मुराद है यानी जाहिरी आंखों से देख हवा से खम्स से जिसको लम्स किया जा सके वो मादी है, हवा से खम्स के जरिए, या आंखों से देखा जाए या महसूस किया जा सके या बू उसकी चखी जा सके, चाहे आंखों से नजर ना आए वो मादी कहलाती है। मसलन हवा इस वक्त नजर आ रही है आपको नहीं है, लेकिन हवा मादी है, क्यों, जिसमें लतीफ रखती है, यानी ऐसा जिस्म है उसका, लेकिन हवा को हम हिस करते हैं, बस हवा से खमसा के जरिए जो चीजें दर्क होती हों उनको कहते हैं ये मादी हैं। अक्ल क्या है, ना अपनी जात में मादी है ना अपने फेल में मादी है, यानी ना तो जात उसका जात उसकी मादी है, यानी हवा से खम्स से उसको दर्क नहीं किया जा सकता, और ना ही फेल में क्या है वो मादी है, यानी अगर वो फेल अंजाम देना चाहे तो बदन जैसी आलात के मोहताज नहीं है। फरिश्ता मुजर्रद है जात के एतबार से भी फेल के एतबार से भी, फरिश्ते को जरूरत महसूस नहीं है कि अपने काम अंजाम देने के लिए वो बदन का मोहताज या जिस्म का मोहताज है, बस अकल जो है वो जातन व फेलन मुजर्रद होती है। नफ्स क्या है, जातन तो मुजर्रद है, नफ्स कभी आपने देखा है वासे खमसा से कभी दर किया उसको, कभी बूज की आई हो, कभी उसको वैसे एहसास किया हो या आंखों से देखा हो, नहीं है, जातन मुजर्रद है, लेकिन फेलन मादी है, यानी नफ्स अगर काम करना, आपका नफ्स क्या है अगर चलना चाहता है, अगर खाना अपनी अपना रुश्त करना चाहता है, बदन का मोहताज है, बदन के बगैर नफ्स कोई काम अंजाम नहीं दे पाता, बस फेलन मादी है और जातन मुजर्रद है, बाकी तारीफें जो है वो वाज़े हैं। फसल सालिस में जिस्म के बारे में बात करते हैं, जिस्म की हकीकत क्या है, इसमें मुख्तलिफ अकवाल पाए जाते हैं जो कि छोड़ दें इसको बयान करने की जरूरत नहीं है, अगरचे मुहिम है फलसफे के अंदर ये, लेकिन अगर इसको तबीयन करने लग जाए तो बहुत सारी चीजों की वजाहत करनी पड़ेगी कि जो कि बहुत सारा वक्त ले लेगा। अगर मसलन यहां पर यह बात मौजूद है, मैं इशारा कर देता हूं, तफसीलात नहीं देता, इसमें बात यह मौजूद है कि जिस्म हमें खारिज में अपनी आंखों के जरिए तो मुत्तसिल नजर आ रहा है, मसलन ये कपड़ा आपको क्या है मुत्तसिल नजर आ रहा है, कभी फासला नजर आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा। इसके अंदर बात फलसफे में ये होती है कि ये जिस्म जिस तरीके से जाहिरन मुत्तसिल है, आया हकीकतन भी मुत्तसिल है या नहीं, हकीकतन अगर माइक्रोस्कोप या क्या कहते हैं छोटी जो छोटी छोटी चीजों को भी दिखाता है, मतलब हर चीज के लिए अलग नाम है उसका, मतलब उसके सितारे देखने हो तो उसका अलग नाम है, मतलब उसके साथ माइक्रो ये एटम चेक करने हो तो उसका अलग नाम है, मेरे ख्याल में लेबोरेटरी के अंदर देते हैं। बहरहाल आप अगर वो बारीक बीनी वाली मशीन के जरिए अगर आप देखें तो कहते हैं कि बाद फलासफा ये कहते हैं कि जिस्म जाहिरन तो मुत्तसिल नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप वो दूरबीन के साथ अगर देखना चाहें कि जो बहुत ही बारीक बारीक चीजों को दिखा देती है, अगर उसके साथ देखें तो ये जिस्म क्या है फासला रखता है आपस में, क्योंकि मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना है, वो एटम आपस में क्या है जुदा है, तो जुदा है बस हकीकत में मुत्तसिल है, ना जाहिरन मुत्तसिल है लेकिन हकीकत में क्या है मुनफसिल है, जुदा है, بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں جسم جس طریقے سے ہمیں متصل نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے متصل ہے. پھر ان کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، ان کو چھوڑے اگلی فصل میں جاتے ہیں، اور اس قسم کی بات یہاں پر موجود ہے. وہ اقوال ہیں، پھر ان کا رد ہے، فصل جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں مادہ اولا اور صورت کا اثبات. مادہ اور صورت کو ثابت کرنا ہے. ابھی تک جو مادہ اور صورت کو ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں، ہر جسم مرکب ہے مادہ و صورت سے، اور جوہر کی اقسام میں سے بھی مادہ اور صورت آپ نے کہا ہے. اب کہتے ہیں کہ آیا مادہ و صورت خارج میں ہیں یا نہیں، اس کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا ہے. کیسے دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ خارج میں کوئی بھی چیز لے لیں، کسی بھی چیز کو آپ اپنے لے کر آئیں مطالعے کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ مٹی جو ہے یہ کیا بنی، مثلا پورا، مثلا آپ کہہ لیں نطفے میں آئی ہے، نطفے سے پھر کیا بنا، انسان بنا. ٹھیک ہے، اب آپ مثلا دیکھیں اس مٹی نے، اس مٹی میں کیا تھی، نطفہ بننے کی کیا تھی، صلاحیت موجود تھی. پس اس کا مطلب کیا ہے، مٹی کے اندر کیا ہے، تبدیل ہونے کی قابلیت موجود ہے، قابل ہے، یعنی قابلیت ہے اس کے اندر. اور ایک اعتبار سے آپ دیکھیں اس وقت یہ خود کیا ہے، مٹی ہے، یعنی جہت فعلیت بھی رکھتے ہیں، یعنی خود کوئی چیز ہے. جب کوئی چیز خود اپنی تشخص رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں کیا ہے، فعلیت. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت بالفعل یہ مٹی ہے، یعنی آپ اگر یہ کہیں فلاں چیز ہے، یعنی وہ اس کی فعلیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز فعلی ہے. بس ایک اس کے اندر جہت کیا ہے، فعلیت کی ہے. فعلیت کیا ہے، اس وقت مٹی ہے. اور ایک جہت اس کے اندر قابلیت کی ہے، یعنی قابلیت سے کیا مراد، یہ اس کے اندر قابلیت ہے کہ تبدیل ہو جائے کس کے اندر، نطفے کے اندر. بس یہ دو جہات ان کے ہم ہر چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز کے اندر یہ دو جہات پائی جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ اور جہت فعلیت کو کیا کہتے ہیں، فعلیت وجدان کو کہتے ہیں. دقت کرنی ہے، تمام استدلال میں شامل ہیں. یہ وجدان کو کیا کہتے ہیں، فعلیت. یعنی فعلیت کا دوسرا نام کیا ہے، وجدان. مثلا کیا مراد، یعنی فعلیت عرض کی کہ اگر آپ مثلا آپ اس وقت بالفعل کیا ہے، انسان ہے، یہ بالفعل اس وقت کپڑا ہے. فعلیت یعنی کوئی چیز رکھنا، وجدان یعنی رکھنا، فعلیت وجدان ہے. اور قابلیت کیا ہے، فقدان ہے. آپ کے اندر اس وقت مجتہد بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، صلاحیت ہے لیکن ہے ابھی نہیں ہے. بس قابلیت فقدان ہے، قابلیت تو ہے لیکن فقدان کے اندر ہے، یعنی مجتہد ہونے کی قابلیت ابھی کیا ہے، قابلیت ہے لیکن خود مجتہد ہے نہیں ہے، فاقد ہے. بس فعلیت جہت وجدان کو کہتے ہیں اور قابلیت فقدان کو کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم فعلیت کو صورت کا نام دیتے ہیں اور قابلیت کو مادے کا، اور پھر یہ نتیجہ لیتے ہیں پس جسم جو ہے وہ ہمیشہ مرکب ہوگا ان دو چیزوں کے ساتھ. کیوں، اگر مرکب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ایک ہی چیز فعلیت بھی رکھتی ہے اور قابلیت بھی رکھتی ہے، ایک ہی چیز کو دو چیزیں قرار نہیں دے سکتے. کیوں، اس وجہ سے کہ ایک چیز وجدان ہے اور دوسری چیز کیا ہے، فقدان ہے. وجدان غیر از فقدان ہے، بس یہ ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک چیز یعنی ایک چیز کے اندر یہ دو نہیں ہو، بس حتمن دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے. पास नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला पास हर चीज जो है जो जिस्म है जो मादी है वो क्या है, मादा व सूरत से मुरक्कब है। यानी मादा व सूरत से मुरक्कब से क्या मुराद है, यानी हर चीज के अंदर दो जहतें पाई जाती हैं, एक जहत फेलियत की और दूसरी जहत काबिलियत की। जहत फेलियत को सूरत कहते हैं और जहत काबिली को मादा कहते हैं। बात वाजह है। बस यहां से इन्होंने इस इस्तदलाल के जरिए साबित किया कि हमारे पास सूरत और मादा है। इसके मुकाबले में क्या था, इशारे के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, इसके मुकाबले में क्या है, शेख इशराक का एक नजरिया है। शेख इशराक किस मजहब के रईस हैं, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, मतलब इशराक है, शेख इशराक कह रहे हैं। शेख इशराक कायल है कि ना जिस्म जो है वो बसीत है। आपने यहां क्या कहा है, जिस्म मुरक्कब है, जिस्म बसीत है, यानी क्या मुराद, मेरे नजदीक जिस्म का फकत एक रुकन है, एक उंसुर है फकत। हम इसी को रद्द कर रहे हैं शेख इशराक को, हम कहते हैं कि ये जिस्म बसीत नहीं हो सकता, मादी जो है, जिस्म मादी की बात हो रही है, मादी यानी जो कसीफ और इस मादा और जिस्म जो मौजूद है मादा में वो क्या है, मुरक्कब है सूरत और मादा के साथ। क्यों, इस वजह से कि जिस्म के अंदर दो जहात अलग अलग हैं, जहत फिकदान है और जहत विजदान है, और विजदान गैरत फिकदान है। कैसे आप कह सकते हैं कि एक ही चीज विजदान भी हो और फिकदान भी हो, नहीं हो सकता। बस जहत विजदान अलग होगी और जहत फिकदान अलग होगी, फेलियत और सूरत आपस में, फेलियत और काबिलियत दोनों जुदा चीजें होंगी, एक ही चीज ना फेलियत रख सकती है ना काबिलियत। तो लिहाजा हर जिस्म जो है वो मरकब है मादा व सूरत से। ये इन्होंने बुरहान के जरिए यहां पर साबित किया है। एक और इस्तेलाह समझ लें, इसको मादा को क्या कहते हैं, ये हतमन जेन में रखें क्योंकि ये ज्यादा, मादा को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका हयूला है। फलसफे के अंदर अगर कोई आपसे पूछे मादा क्या है या हयूला क्या है, तो हयूला का नाम सुन के डर नहीं जाना कि हयूला कोई और चीज है मसलन, वो क्या समझ जाइएगा कि हयूला यानी भाई मादा, तो एक ही तारीफ है दोनों की। मादे की फिर दो किस्में हैं और इसी तरीके से हयूला की कोई एक है दूसरे। मादा जो है या उला के, मादा उला और मादा सानिया। मादा उला किसे कहते हैं, मादा उला मसलन जो जिस्म की तरकीब में क्या है सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, मसलन आप कहते हैं कि जिस्म मुरक्कब है किससे, मादा व सूरत से। पर जिस्म के अंदर जो मादा पाया जाता है वो मादा उला कहलाता है, जिस्म वाला। लेकिन फिर क्या है, जब ये जिस्म तश्कील पा जाता है, अब ये जिस्म खुद क्या बन जाता है, दोबारा मादा बनता है, किसके लिए, मसलन नबात के लिए, जिसमें नबाती के लिए, या क्या है ये जिस्म दोबारा क्या है, ये जिसमें नबात क्या है, ये फिर दोबारा मादा बन जाता है किसके लिए, जिसमें हैवानी के लिए। क्योंकि कायनात का क्या है वो तसलसल यही है ना, कि पहले क्या है, जिस्म है, जमाद है, मट्टी है, ये जमाद है, मट्टी यानी जिस्म जो है वो क्या है, मादा व सूरत था, इसके अंदर जो मादा पाया जाता है वो मादा उला कहलाएगा, ये मट्टी खुद क्या बनेगी, फिर मादा बन जाएगा, ठीक है, मादा बनेगा। मादा क्या मुराद, यानी ये खुद जिस्म, जिस्म के ऊपर एक और सूरत आ जाएगी, जब सूरत आएगी उसके ऊपर तो वो नबात बन जाएगी, ठीक है। अब ये नबात ये दोबारा मादे की सूरत ले लेगी, जब इसके ऊपर क्या है सूरत एक और आएगी तो वो क्या बन जाएगा, जिसमें हैवानी बन जाएगा। मसलन नबात की फसल क्या है, सूरत क्या है, उसकी फेलियत क्या है, मसलन उसका रुश्द नुमा करना, नमूब जो है, अगर इस जिस्म के अंदर नमूब आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, नबात। अगर इस नबात के अंदर तहरुक बिल इरादा आ जाए तो ये नबात क्या बन जाएगा, ये जिसमें हैवानी बन जाएगा, ठीक है। ये जिसमें हैवानी दोबारा माता बन जाएगा जब इसके अंदर क्या है नुतक आ जाएगा, तो क्या है वो क्या बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। बस जो पहला मादा है उसको मादा उला कह देंगे और ये जितने मादे बाद में बनेंगे इन सब को जमा करके क्या कहते हैं, मादा सानिया, यानी ये इस्तलाह है एक मादा सानिया की। अगरचे अगर आप तरतीब के एतबार से देखें तो इसका मादा जो है वो मादा उला है, इसका मादा सानिया कहलाना चाहिए, इसका मादा सालिसा कहलाना चाहिए, इसका मादा जो है वो राबिया कहलाना चाहिए, लेकिन इस्तलाह फलसफे में क्या, मादा उला उसको कहेंगे जिससे अव्वल जिस्म तश्कील पाया है, ठीक है, वो मादा उला कहलाएगा, उसके बाद जितने भी मादे आएंगे वो सारे मादा सानिया कहलाएंगे। ये इस्तलाह आपने जहन में रखें। आगे अगली फसल जो फसले खामिस
कितनी पढ़नी है,
मैं जरा जो इरादा है वो ये कि आप इसको कहां तक, हाँ ये छह छह फसलें पढ़ें इसको, क्योंकि आगे फिर पांच फसलें रह जाएंगी, कल हमारी वो छठा मरहला जो है वो खत्म हो जाएगा। अर्ज किया था कि ये सारी तारीखों के साथ इर्तिबात है इनका, इनको तेजी से गुजारेंगे इसको। अब यहां पे क्या करना है, सूरत तो, बस करने में रहेगा, काम रह जाएगा, या थोड़ा रेस्ट कर लें फिर देखते हैं, अगर उस्ताद ना आए उस आपके वो चलें ठीक है, खत्म करते हैं इसको, तो बाद में देखते हैं।